चलिए अगली आयत पे देखिए, आयत 47। कालत, वो बोली। अब आप देखिए, कंवारी लड़की को इतनी बड़ी खबर मिल गई, रब्बी, रब याद आ गया। हालांकि खबर तो फरिश्ते ने दी थी, क्योंकि दिल में रब की याद बसी हुई थी, और जब दिलों में अल्लाह की याद होती है तो मुश्किल से मुश्किल वक्त में लफ्ज रब, अल्लाह मुंह पे आता है, किसी और का नाम नहीं आता। अन्ना यकून ली वलदुन, कैसे होगा मेरा बेटा, वलम यमससनी बशर, मुझे तो किसी इंसान ने हाथ नहीं लगाया। देखिए पाकीजगी की इंतहा है ना, पाक दामन थी तो ये जुमला बोला ना। अगर डाउटफुल होती, नाउज बिल्ला, कोई शक होता तो कहती, आई डोंट नो किसका है बच्चा। यानी आप देखिए किसका बच्चा है। मैंने कल किसी की कोई ऐसी बात पढ़ी कि शौहर ने बीवी से पूछा, ये बता दो कि तुम्हारे शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था और कितने थे। तो उसने जो भी कहा, कैसे कि इशारा किया, तो 6-7 का नाम लिया। कहते इट्स फाइन, इतने तो हर एक के होते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं थे। तो मरियम ने ये नहीं कहा कि किसका बच्चा है, नऊज़ु बिल्लाह, के मेरे तो इतने पार्टनर्स बन गए। आज क्रिश्चियनिटी की बुनियादें हिल जाती हैं सिर्फ इस जुमले से कि वलम यमससनी बशर, मेरे बिरलात कैसे होगी, मुझे तो किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया। अमेरिका की एक रिपोर्ट मैंने कहीं पढ़ के सुनाई थी कि 20 साल का होने तक एक बच्ची 3-4 पार्टनर बदल चुकी होती है। ये औरत की बात है, मर्दों का तो कोई अंदाज़ा भी नहीं है। लिविंग टुगेदर और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडशिप, ये अब इतना लीगल हो गया कि लोग कहते सुनते शर्माते भी नहीं है। वो कहते इट्स फाइन। तो यहाँ कहा, नहीं मुझे तो किसी बशर, और लफ्ज़ बशर को देख लीजिए, नकिरा में है, मुझे तो किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया। असबाब पे चली गई। काला कज़ालिकल्लाहु यखलुकु मा यशा, कहा वो अल्लाह ऐसे ही करता है जैसे वो चाहता है। फरिश्ते ने कहा कि आपको असबाब की जरूरत है, अल्लाह को असबाब की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने आम लोगों की पैदाइश में बाप का हिस्सा रखा है, लेकिन बाप के पास वो चीज़ कहाँ से आती है, अल्लाह ही तो देता है। तो माँ के पास भी अल्लाह की तरफ से है, फरिश्ता आता है और वो माँ के रहम में फूंक जाता है। तो अल्लाह ने यहाँ डायरेक्ट वो काम करवा दिया, और उसकी शान क्या है, कज़ालिकल्लाहु यखलुकु मा यशा इज़ा कदा अमरन फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून। इसी तरह जब अल्लाह किसी काम के करने का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो काम हो जाता है। कितने खूबसूरत तरीके से, अब देखिए लफ्ज़ कज़ाली का बड़ा अहम है ना, ऐसे ही होगा, जो अल्लाह ने सोचा है वो होगा, और ये करके रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला को किसी से पूछना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता, और अल्लाह सुबहान ताला जब किसी काम का इरादा कर ले तो फिर उसके ऊपर किसी को छू चांग करने की जरूरत नहीं है, उसकी इजाज़त नहीं होती है। इस आयत में आप देखिए तो लफ्ज़ कोई भी नया मुझे तो नहीं दिख रहा, पहले गुजर चुके हैं सारे। अगर आपको कोई नया लगे तो पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो लफ्ज़ है ना, अल्लाह ताला की शान के, इज़ा कदा अमरन, इसको थोड़ा देख ले, ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। कज़ा का लफ्ज़ कई मानों में आता है, काफ दुआत या अल कज़ा, कई मानों में, मसलन मुनक़ते होना, जैसे मौत के लिए लफ्ज़ बोलते हैं ना कज़ा आई, आई कज़ा चले, यानी हमारा ज़िंदगी से ताल्लुक़ मुनक़ते हो जाता है। फिर इसी तरह ख़त्म होने का मानी भी है, नमाज कज़ा हो गई यानी ख़त्म हो गई। फिर इसी तरह मुकम्मल करने का मानी भी होता है इसमें, कज़ा करते हम कहते हैं ना, हाँ मैंने ये अदायगी कर दी है, उसके लिए भी ये लफ्ज़ है। फिर इसी तरह किसी चीज़ को मुहकम और मजबूत करने के लिए भी ये लफ्ज़ आता है, किसी चीज़ को उधर ही ले जाना जिधर उसको ले के जाना होता है। कहते हैं अरब लोग कद कज़ा दई नहू, उसने अपने कर्ज को पूरा पूरा चुका दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या पता चला कि जब अल्लाह किसी काम का फैसला करता है उसको बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ता। और कुरान में इंशाल्लाह हम इस बात की बहुत सारी मिसालें पढ़ेंगे। खड़े खड़े मूसा के जादूगरों का दिल बदल गया, मूसा के मुक्का मारने से हाथ लगा और मर गया, पीछे हर जगह आप देखेंगे तो यही बात आएगी कि जब अल्लाह किसी चीज़ का इरादा करता है। खैर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सिफात को आगे भी कंटिन्यू किया जा रहा है। हम लोग थोड़ा सा अगर इस पर गौर करें ना, तो हमें अंदाज़ा होता है कि इतनी बातें सुन के इसको महसूस भी करना, ये भी एक ऐसी ही औरत के लिए मुमकिन है कि जो अपने होश और हवास जो है वो कायम रख सके। तो इस अमल की बात है कि ज़िंदगी में बड़े से बड़ा मुश्किल मरहला भी आ जाए तो हिम्मत करनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए। और हज़रत मरियम का ये कहना कि मुझे तो किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया, इससे पता चलता है कि जब कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे, ज़ाहिर तो ये इल्ज़ाम ही था ना, तो अपनी सफाई ज़रूर पेश करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लोग खामोश हो जाते हैं और अगले बंदे को शक होता है। जब आप हक पे हैं, आपने ज्यादती की नहीं है, तो फिर आप लोग ज़रूर रखिए। फिर एक सवाल पैदा होता है कि जब एक इंसान ये सुनता है कि साहिब कुन फयकून अल्लाह ताला, तो उसके क्या असरात बंदे पे मुरतब होते हैं? तो पहला जवाब कि अल्लाह की कुदरत दिल की गहराइयों में उतर जाती है, फिर इससे इंसान का दिल मुतमईन हो जाता है। इंसान को अपने ऊपर ताज्जुब होने लगता है कि इतनी सादा सी बात मुझे समझ क्यों ना आई। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत का शऊर दिलाते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब इंसान अल्लाह ताला की इस चीज़ को देखता है, तो उसको बाकी चीज़ें फिर बिल्कुल ही मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि अल्लाह ताला उसको करता है। खैर, अगली सिफत देखिएगा, वयुअल्लिमुहुल किताब अवल हिकमत अवत तौरात अवल इंजील, और अल्लाह ताला इसे किताब और हिकमत और इंजील सिखाएगा। तीन चीज़ें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दी गईं, क्या क्या? नंबर एक किताब, फिर हिकमत, फिर तौरात और इंजील। मैं आपसे पूछती हूँ, पीछे से चलते हैं, इंजील सबको पता, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के आखिरी कह लीजिए कि जो दर्स थे, वही बात में इंजील की सूरत में पायल अप हुए। इंजील और तौरात पे आप शुरू में बहुत डिटेल से सुन चुके हैं कि किस तरीके से अल्लाह सुबहाना ताला ने उनको जो मौजज़ात दिए, जैसे हमारी हदीस है ना कि नबी सल्लम की ज़िंदगी में बोली गई और पायल अप बाद में हुई, बस कह लीजिए कि इंजील का भी हाल ये है कि हज़रत ईसा की ज़िंदगी में रिटन फॉर्म में इंजील नहीं थी, बाद में उनके बयानात और उनके कलाम को जमा किया गया। और लफ्ज़ इंजील की थोड़ी सी डिटेल पीछे नहीं दी थी, आज ले लीजिए। इंजील क्या है? अगर आप देखें तो ये लफ्ज़ भी अरबी लफ्ज़ नहीं दिखता। नजल से अगर ले, नून जीम लाम इसका रूट बनता है, अगर इसको अरबी लफ्ज़ समझें। अन नजल के क्या मानी होते हैं? बहने वाला पानी, इसी तरह से किसी चीज़ को पाक करना। बात कहते हैं ये यूनानी लफ्ज़ है, वहाँ से अरबी में आया था। खुशखबरी, मुसर्रत अंगेज बात, खोल कर बयान करना और वुस्सत देना। आज की जो इंजील ईसाइयों के पास है ना, वो इंजील नहीं है जो हज़रत ईसा के पास थी। इस पे बात पीछे कर दी, इसलिए ज़्यादा नहीं बात करना चाहती, लेकिन हज़रत ईसा को जो इंजील दी गई थी वो वाकई खूबसूरत थी और उसके अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत की बातें थी। दूसरी चीज़ देखिए, तौरात है। तौरात का लफ्ज़ वूरिया से, वाव से, चमकती हुई चीज, रोशन, रोशन करने वाली चीज़। ये भी लफ्ज़ इब्रानी से आया है अरबी में। ऐसा लफ्ज़ जो किसी और ज़ुबान से अरबी में आए ना, तो कहते हैं मारब है, यानी ये इब्रानी से मारब है। तौरात का मानी होता है शरीयत, हुक्म, अहकाम, शरा, ठीक है? तो आपको दोनों के नामों से भी फ़र्क पता चल रहा है कि तौरात मोर कॉम्पैक्ट है, लॉ है उसमें, और इसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। अहदनामा अतीक या कदीम जो है वो तौरात है, और अहदनामा जदीद जिसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं वो इंजील है। 39 टोटल सहीफे हैं और हर एक पे डिफरेंट थिंग्स हैं। तो बहरहाल ये किताबें दोनों दी गई। आप कहते हैं कि हज़रत ईसा को कैसे दी गई, तो नोट करिएगा, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी यानी तबलीगी ज़िंदगी के आगाज़ में तौरात ही को फोकस किया था। जैसे बाकी अंबिया कराम आते थे और तौरात की तबलीग करते थे, ईसा ने भी यही की। लेकिन इंजील क्या हुआ? उनके बाद की ज़िंदगी के बयानात को पायल अप किया गया। तीसरी चीज़, हिकमत दी गई। अब ये चार चीज़ें क्या हैं? तौरात इंजील तो हमें समझ आ गई, असल चीज़ समझने की यहाँ कि हिकमत क्या है और किताब क्या है। समझ आ रही है बात आपको? अगर हम किताब और हिकमत को तौरात इंजील समझते तो फिर अलग से कहने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ ये जो वाओ आए हैं ना, ये बड़े अहम हैं। किताब और हिकमत और तौरात और इंजील, चार चीज़ों के माबैन तीन वाओ आए हैं। ये जो दो वाओ हैं ना, ये अतफ हैं, वाओ यानी और के मानों में, जबकि दरमियानी वाओ जो है बीच का वाला, ये तफसीर का है। क्या पता हुआ? इसको मैं एक स्ट्रेच में पढ़ती हूँ, फिर आपको समझ आएगा मफहूम क्या होगा। अल्लाह इनको सिखाएगा किताब और हिकमत यानी तौरात और इंजील, इसलिए कि तौरात में सिर्फ अहकाम थे, हिकमत नहीं थी। इंजील में सिर्फ हिकमत है, अहकाम नहीं है। अगर इस नुक्ते को समझ लें तो फिर ये बात समझ आ जाती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो चीज़ें दी हैं वो भी हिकमत वाली थी। एक और मफहूम इसका समझिएगा। तौरात और इंजील तो समझ लिया, अपनी ज़िंदगी में अब कर गए हैं। ये जो अल किताब और हिकमत है, ये अब आने वाली ज़िंदगी में होगी। क्या? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब जब दोबारा आएंगे ना, تو یہ قرآن کی تبلیغ کریں گے، قرآن کو مانیں گے، اور حکمت نبی کی حدیث. تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب دوبارہ آ کر جو بات کریں گے وہ بھی اس میں. بہرحال کانٹرڈکشن کچھ بھی نہیں ہے، بات ایک ہی ہے. چلیے اور کیا ہوں گے؟ آیت 49، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے جائیں گے. یعنی اتنی علمی شخصیت ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کچھ دے گا، حکمتیں سکھائے گا، ایک قسم کا دیکھا جائے تو ساری کتابوں کا مجموعہ ان کو دے دیا نا، پچھلی بھی کتاب بھی اور بعد والی بھی کتاب. اور وہ رسول انلا بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائے جائیں گے. سوال آ گیا نا رسول کا. اور کیا کہیں گے؟ اب یہ کلام ہے ان کا، انی قد جیتکم بھی آیت میں ربکم، میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. حضرت عیسیٰ دنیا میں جب آئے تھے اور اس وقت انہوں نے یہ باتیں جو کہی تھی اس کا تذکرہ ہے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. اب آپ نوٹ کریں نا ذرا، دو باتیں اکٹھی آ گئیں. آپ کہہ سکتے ہیں حضرت یحییٰ کے بارے میں جب بات ہوئی پیچھے حضرت زکریا کے تعلق میں تو کیا کہا، نبی یا من الصالحین، میں نبی ہوں صالحین میں. حضرت عیسیٰ کی بات آ رہی ہے تو رسول انلا بنی اسرائیل ہو گیا. حضرت یحییٰ قتل کر دیے گئے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھے. حضرت عیسیٰ رسول تھے اس لیے قتل نہیں کیے جا سکے. جو بات میں نے اوپر خود کہی تھی وہ آپ کے پاس ریفرنس میں آ گئی ہے. پھر یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، یہ کیا ہے؟ خود اپنا وجود ہی نشانی تھا. یہ خوشخبریاں ابھی چل رہی تھیں حضرت مریم کو کہ بیچ میں آپ کہہ لیجئے کہ اللہ نے ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ کو انوالو کر دیا، جس کو آپ کہتے ہیں نا قصہ مختصر، ولادت ہوئی، پلے بڑھے، تاریخ کے سارے یعنی دور دیکھ لیے، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کو جا کے کہتے ہیں دیکھو میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، اور انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں. ایک بات یہ کہہ دی، فَانْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے. اور آپ نوٹ کریے گا ہر معجزے کے بعد کیا کہہ رہے، بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ لَكُمَا الْأَبْرَصَ وَأُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو بھی، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں. یہ جو ابرس ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ نشان پڑتے ہیں سفید. ایک ہوتے جزام، جزام کہتے ہیں کوڑ کو، جس میں جسم پہ دانے اور گندگی ہوتی ہے. ابرس کیا ہوتا ہے؟ وائٹنس، جیسے سفیدی ہوتی ہے، پگمنٹس نکلتے ہیں جسم سے. تو بہرحال جو بھی سکن ڈیزیز تھی، یہ ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہوتی. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تم کو بتا سکتا ہوں تم کیا کھاتے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور تم کیا ذخیرہ کرتے ہو. فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں. ان نفی ذالک الآیت لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. کیا پتہ چلا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی سچائی اور دلیل کے طور پر یہ معجزے پیش کر دیے. بات ابھی نہیں پوری ہوئی، اگلی آیت میں بھی ان کا ہی کلام ہے، اس لیے اس کو ساتھ ہی لیتے ہیں، پھر اکٹھی بات کریں گے. ومصدق لی ما بین یدی من التورات، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں. تورات کی سچائی پیش کر رہے تھے نا، کیونکہ تورات میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر تھی نا، تو حضرت عیسیٰ کے آنے کی بھی تھی. تو حضرت عیسیٰ آ گئے تو تورات سچ ہو گئی. وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے آیا ہوں کہ میں حلال ٹھہرا دوں تم پر ان بعض چیزوں کو جو تم پر حرام کر دی گئیں. شروع کی جو بات کی ہے وہ یاد آ گئی، کہ یہود کے علماء نے خود کچھ چیزیں مشکل کیں، کچھ اللہ نے ان کو سزا دینے کے لیے مشکل کیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہود کی شریعت آسان ہوئی تھی، نرم احکامات دیے گئے تھے. اشارہ اس میں سبت کے حکم کی طرف ہے، ہفتے والے دن جو مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، لیکن حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے ہلکا ہو گیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض مذہبی مزاج کے لوگوں میں بہت سختی پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ دین کے احکام میں غلوف کرتے جاتے ہیں. اور سبت کے حکم میں یہود نے اس حد تک غلوف کیا کہ اس روز کسی مریض کے لیے کوئی کہہ دے نا دعا کریں کہ اللہ اس کو شفا دے، کہتے تھے یہ بھی جائز نہیں ہے، دعا بھی نہیں کرتے تھے، لائٹ نہیں جلاتے تھے. کئی لوگ ہیں وہ پہلے ایک دن لائٹ جلا کے اگلے دن بند کرتے تھے، کہتے تھے یہ لائٹ جلانی بند کرنی یہ بھی کام ہے. آپ آج بھی نیو یارک میں جا کے دیکھیے، پوری پوری بستیاں یہود کی ہیں، کہ وہاں کوئی بندہ بشر آپ کو ہفتے والے دن نہیں دکھے گا، وہ آپ گھر کے عام کاموں کو بھی گناہ سمجھتے ہیں. کتنی مشکل شریعت تھی. حضرت عیسیٰ نے آ کر ان ساری چیزوں کو الگ کیا اور فرمایا وجیتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں رب کی طرف سے، کرو کیا؟ فتقوا اللہ واتیونی، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. دیکھیے کون ہے اللہ، کس اللہ کی اطاعت کی بات کر رہے ہیں؟ لوگ تو جیزس گاڈ کہتے ہیں. تو اگلی آیت میں کہا ان اللہ ربی و ربکم فعبدو، میرا اور تمہارا رب ایک اللہ ہے، بس اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. بالکل یہی لفظ اب سورت مریم کے آیت 36 میں بھی پڑھیں گے. تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ مل گیا. یہاں پہ دیکھیں آیت 51 پہ حضرت عیسیٰ کا بچپن جوانی سب کچھ برا ہو گیا. ماں کو خوشخبریاں مل رہی تھیں، بیچ میں بیٹے کی بات تبلیغ کی صورت میں آ گئی، ان کے سارے معجزات کا پتہ چل گیا، انہوں نے کیا کرنا تھا دنیا میں، یعنی ہر بات بہت کلیئر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایسے معجزے کیوں دیے؟ موسٹلی آپ دیکھ رہے ہیں نا بیماری سے متعلق ہیں، ابرس کے مریض کو دیکھنا اور گندوں کو دیکھنا، کیونکہ اس دور میں طب بہت عروج پہ تھا. اور اللہ تعالیٰ ہر دور کے نبی کو وہی معجزہ دیتا ہے جو لوگوں کے ذہنوں پہ چھایا ہوتا ہے. یہی بات ادھر سمجھ آتی ہے. حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا، تو ان کو جو معجزے دیے گئے وہ دیکھنے میں جادو تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دیا گیا اور اس دور میں کس چیز پر مان تھا ان کو؟ ادب پہ، اپنے کلام پہ، اپنی زبان پہ. اللہ نے قرآن کا ایسا معجزہ دیا جس کو رہتی دنیا تک وہ قائم رکھیں گے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ تم نے جو حرام کیا اس کو حلال کرتا ہوں، یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے، لوگ قبول نہیں کرتے. سال ہر سال کے ساتھ لوگوں کی روایتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا کام دیا، بہت مشکل کام دیا، لیکن حضرت عیسیٰ کی دعوت کا اینڈ کیا ہے؟ فعبدو، اس کی عبادت کرو. آج حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے، خود عیسیٰ کو خدا کہتے، وہ کہتے نہیں ھذا صراط مستقیم، یعنی یہ کون سا راستہ ہے؟ توحید کا، اللہ کی عبادت کا. اور یہ راستہ آج مسلمانوں کے پاس ہے. اب بتائیے جو ایسا دین لے کر آئے گا کیا لوگ اس سے دوستی کریں گے؟ آج بھی دیکھیے آپ ذرا سی کوئی بات کریں، لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں یہ بات سنی. اچھا ہمارے بڑے جو کرتے تھے کیا وہ غلط کرتے تھے؟ آج میں سوچتی ہوں جو حق کے ساتھ دین پیش کرتا ہے نا، وہ بھی انہی مشکل مرحلوں سے گزرتا ہے جن مرحلوں سے اس دور کے انبیاء کرام گزرے تھے. لوگ عادی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس اب سب ٹھیک ہے، ہم نہیں بدل سکتے. ان ساری آیتوں میں نا چند لفظ مشکل تھے، ان کو دیکھ لیجئے. تاکہ یہ تین کا لفظ پہلی دفعہ ہے، تو تین توئے یا نون سے گیلی مٹی کو کہتے ہیں، پانی میں ملی ہوئی مٹی. خواہش سے پانی کا اثر زائل کیوں نہ ہو جائے، خشک ہو جائے پھر بھی تین ہی کہا جائے گا. ٹھوس مٹی کو بھی تین اتن کہتے ہیں. بعض دفعہ مہر لگانے کے لیے ایسی مٹی کو استعمال کیا جاتا ہے. آگے ہم انشاءاللہ مٹی کی مختلف قسمیں پڑھیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ نیا اور کوئی لفظ دیکھ لیجیے اگر آپ کو آتا ہے. کہیا کیا لفظ ہے؟ کاف جو ہے نا اس میں ماند ہے، جیسے لیسا کا مثلی ہی، اصل لفظ ہے کہیا. اب اس کا اگر آپ کو ترجمہ یا روٹ ورڈ پوچھ لیا گیا تو گھبرائیں گے نا. تو حیا کیا ہے؟ ہا یا حمزہ. حی الامر تحیتن کہتے ہیں، اس نے معاملے کو درست کیا، تیار کرنے کے معنوں میں. سورہ کہف میں ایک دعا بھی ہے، وحیی لنا من امرنا رشدا. تو یہ حیی جو لفظ ہے نا، اصل میں وہاں آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. اسی سے پھر حیت کسی چیز کی حالت اور کیفیت کو کہتے ہیں، شکل و صورت کو کہتے ہیں. کسی کی ذہنی، قلبی یا دوسری کیفیت جو محسوس شکل میں سامنے نہ آئے، یعنی مانت کے معنوں میں، جیسے ایک شبی کا ایک تھوڑا سا اس میں سینس آتی ہے. تیر آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، تارا یا تیر و تیرن پرندے کو کہتے ہیں، پرندے کا اپنے پروں کے ساتھ ہوا میں حرکت کرنا. اسی سے لفظ کیا ہے آج ہمارے ہاں؟ تیارہ. گاڑی کو کیا کہتے ہیں؟ سیارہ. اسی طرح طائر جو ہوتا ہے نا، دماغ کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہر چیز جس سے نیک یا بد سکون لیا جاتا ہے وہ بھی دماغ سے اٹھتی ہے، یعنی دماغ میں بھی ایک اڑان ہی ہوتی ہے نا، ہم اپنی سوچوں میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں. پھر فن فخو میں نفخ ہے، نون فا خا، منہ سے ہوا نکالنے کو کہتے ہیں. نفی خف سور ہم پڑھیں گے، نفخ فن نار، اس نے آگ میں پھونک ڈال دی، تو پھونکنے کا معنی آتا ہے. اور یہ لفظ قرآن میں بہت دفعہ آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہاں دیکھ لیجیے گا. پھر اسی طرح دیکھیے ابریو، بارہ حمزہ اس کا روٹ ہے. برا کہتے ہیں کسی چیز کا ان چیزوں سے الگ ہو جانا جو اس کی غیر ہوں، یعنی جیسے آپ چاول چنتے ہیں تو اس میں سے وہ روڑے نکال دیتے ہیں نا، دال میں سے پتھر نکالتے ہیں، تو جو چیز اس کے اندر الگ سے شامل ہو جائے نا اس کو نکالنا، इसीलिए फिर अलग होना। इसी से लफ्ज तबर्रा भी है, एक सूरत भी इस नाम की कुरान में बोले। सूरत तौबा का दूसरा नाम क्या है? बरात उमिन, तो वो बरा लफ्ज भी इसी से है। ये अपनी मुवासलत के लिए लिखेंगे, कभी तर्जमा नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। तो उबरीउल अकमह का जो लफ्ज आया है, बरीउल मरीद कहते हैं कि मरीज शिफा पा गया, और मुराद ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसलिए रखा। अल्लाह ताला का नाम अल बारी भी इसी से ही है, क्योंकि उसमें भी मुख्तलिफ फॉर्म्स को चेंज करके बदला जाता है। अकमह का लफ्ज नया है आपके लिए, काफ मीम हा को कहते हैं, पैदाइशी अंधापन यानी बाय बर्थ जो ब्लाइंड हो, ऐसे अंधे को अलकमह कहते हैं। बाज कहते हैं पैदाइशी और गैर पैदाइशी दोनों के लिए यही लफ्ज आ जाता है। कमीहद नहार कहते हैं सूरज पर गुबार छा जाए और दिन अंधेरे में बदल जाए। इसी तरह कमीह फुलानुन कहते हैं वो शख्स जो उठकर जिधर उसका दिल चाहे चल पड़े। होते हैं कई मनमोजी, हुक्का पकड़ा अब उधर चल पड़े, अब उधर चल पड़े, वही लफ्ज है। तो यहाँ अंधों को निगाह बरसने वाली बात क्या हुई कि जिनकी मतलब बसीरत नहीं थी, अल्लाह के हुक्म से उनको बसारत मिल जाएगी। तद्दखिरुन बड़ा खूबसूरत है, आप इसमें बहुत गलती करेंगे। क्या रूट होगा तद्दखिरुन का? तो जाल कहाँ से आ गया? ये तो तद्दखिरुन है जी। तद्दखिरुन में जाल जो थी वो दाल में बदली हुई है। अरबी जुबान की ये खूबसूरती है बोलने में आसानी के लिए। जखरा यस्खुरु कहते हैं किसी चीज को लेना या अपना लेना, छुपा कर इस तरह रखना कि जरूरत के वक्त काम आए। ठीक है, तो जखीरा करना उर्दू में इसी लफ्ज से है। अल मुद्दखिर उस घोड़े को कहते हैं जो दौड़ने में पूरी ताकत खर्च ना करे बल्कि कुछ बचा ले। कुछ होते हैं ना, अभी ताकत होती है लेकिन कहते हैं थक गए हैं जब, तो एक कदम नहीं उठा रहे, मियाँ के बाजार जाना है, फौरन चल पड़ते हैं। तो वो कौन सी छुपी हुई ताकत आती है हाथ में जो हमने पहले से छुपाई होती है? काम कर करके थके होते हैं लेकिन इतना नहीं थके होते कि हम उसमें आ जाएं। बहरहाल ये बात पूरी हो गई। उसके बाद आप देखिए कि मुझे तो कोई और नया लफ्ज़ नहीं इसमें मिल रहा। अब अगला हिस्सा यानी सबक का आखिरी हिस्सा शुरू हो रहा है आयत 52 से। समझ लीजिए, मैं अपने लफ्ज़ों में आपको ये बात पहले से बता चुकी हूँ। हज़रत ईसा ने अल्लाह के हुक्म से तबलीग की, अल्लाह ने उनको नबूवत दी, लेकिन उनके ऊपर एक ठप्पा लग चुका था यहूद की तरफ से, वलदुज़्ज़िना का नाउज़ुबिल्ला। और दूसरा ये है कि उनकी तालीमात जो थी वो लोगों को पसंद ना आई, तो उन्होंने रूमी बादशाह के साथ मिलकर मुकाबला किया। जी, तुराब सूखी मिट्टी को कहते हैं और तीन गीली मिट्टी को कहते हैं। ये आगे आपको इंशाल्लाह सूरह हिजर में गालिबन ये सारी मिट्टियों के नाम आते हैं इकट्ठे, हिजर है मुझे लगता है, उसमें लिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह फर्क क्या होता है। ठीक है, जितना भी आखिरी हिस्सा है ना सबक का उसका टॉपिक लिख लीजिए, हजरत ईसा को सूली क्यों चढ़ाया गया। और ये आपको ऐसे भी देखिएगा फील होगा जैसे आंखों देखा आप हाल देख रहे हैं। आइए पढ़ते हैं, फलम अहस्सा मिनहुमुल कुफर, जब महसूस किया ईसा ने उनमें कुफर। अहस्सा का लफ्ज महसूस करने से, हा सीन सीन इसका रूट है। हिस कहते हैं हरकत को, खफी आवाज को। हवास का लफ्ज भी इसी से, आप कहते हैं मेरा छठी हिस कह रही है, तो महसूस करना, आगाह होना, फील करना, किसी चीज का नुमाया हो जाना, वो सारे लफ्ज इसी में आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे हसी सहा, कुरान में एक जगह यूज होगा। खैर, ईसा ने महसूस किया, इशारा है उन साजिशों की तरफ जो यहूद के रिबियों ने उस दौर के बादशाह के साथ मिलकर की थी। तो ईसा ने क्या कहा? قال من انصاري الى الله, कौन है मेरा अल्लाह के रास्ते में मददगार। अब आप देखिए बीच का सारा अरसा खत्म, क्या हुआ? लंबी चौड़ी बातें, जैसे नबी सल्लम पे अगर हम लें तो सारे मक्का के 13 साल हजफ और हिजरत का वक्त आ गया। हजरत ईसा के लिए हालात इतने तंग कर दिए गए कि हजरत ईसा ने पुकार लगाई कि आओ कौन मेरी मदद करेगा। हजरत ईसा को महसूस हो गया था कि उलमा यहूद जो हैं, चूंकि उनकी सरदारी को खतरा है मेरी तालीमात से और अब वो मेरी मुखालफत करेंगे, तो लिहाजा मुझे मदद की ज़रूरत है। इससे क्या पता चलता है कि नबी ही क्यों ना आ जाए दुनिया में, उसको भी दीन के मददगारों की ज़रूरत होती है। हरफन मौला कुछ भी नहीं कर पाता, वन मैन शो कभी कहीं नहीं चलेगा। तो दीन का काम एक टीम के साथ चलता है, जितने ज़्यादा दर्द रखने वाले लोग मिलते हैं उतना दीन का काम खूबसूरत होता है। और कुछ लोग हिजबुल्लाह में शामिल होते हैं अंसारी लल्ला बन के, कुछ हिजबुल शैतान होते हैं जो कि शैतान के रास्ते में चलते हैं। दुनिया में आज देखिए शैतान के चीले कितने हैं और अल्लाह के रास्ते में आने उठने वाले कितने हैं, ये बात आगे जाके भी हमें और समझ आएगी। खैर, जवाब सुनिए। قال الحواریون نحن انصار اللہ, हवारियों ने कहा कि हम हैं अल्लाह के रास्ते के मददगार। ये कौन है भाई हवारी? देखिए हवारी का लफ्ज़ हौर से है, हा वौरा, हारा यहूरु हौरन कहते हैं लौटने को, वापस आने को, एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होना, ज्यादती के बाद फिर से कम हो जाना। तीन मानी इसमें बताए जाते हैं। नंबर एक, किस्म का रंग यानी सफ़ेद रंग मुराद है, पलटना और घूमना। इसी से लफ्ज़ हूर भी है, जो जन्नत में औरतें होंगी। महवर का लफ्ज़ सुना, फलां चीज़ अपने महवर के गिर्द घूमती है, ज़मीन अपने माहवर या महवर होता है बेसिकली, तो वो लकड़ी या लोहा जिसके गिर्द कोई चीज़ गर्दिश करते हैं। इसी तरह लाहौर के मानी हैरत के भी होते हैं, एक लकड़ी जिसकी सफ़ेदी की वजह से उसको बैदा भी कहते हैं। तो बहरहाल हवारी के बारे में लोग कहते हैं कि ये धोबी थे, कपड़ों को धोते थे। बाज़ कहते हैं कि साफ दिल वाले लोगों को हवारी कहते हैं। आप यहाँ ये लिख लीजिए कि जैसे नबी सल्लम के सहाबा को सहाबी कहते हैं ना, तो हज़रत ईसा के सहाबा को हवारी कहते हैं। गरीब लोग थे, कमज़ोर थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग ज़्यादातर कहते हैं कि गलीली नाम की झील के किनारों पर होती थी, समंदर की तरफ एक बहुत बड़ी झील थी। तो वहाँ जब धोबी आते तो आप उनको तबलीग करते, कभी मछलियाँ पकड़ने वाले होते तो उनको तबलीग करते, तो उन्हीं में से कुछ लोग आपके मददगार आ गए। क्या पता चले कि हज़रत ईसा के अव्वलीन साथी हवारी थे और ग़रीब थे। नबी सल्लम ने फरमाया कि मेरे हवारी हज़रत ज़ुबैर हैं। आपके कौन थे? ज़ुबैर फूफो के बेटे थे, आपकी फूफी के बेटे थे, तो उनका लकब हवारी रसूल है। कि एक ख़ास वाक़ जिसकी तरफ मैं जानना नहीं चाह रही इसलिए छोड़ रही हूँ, लेकिन बहरहाल ये कि ये कुछ गरीब लोग थे और उन्होंने हज़रत ईसा का साथ दिया और कहा कि ठीक है, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, नहनु अंसारुल्लाह। अच्छा, हज़रत ईसा ने क्या कहा था? मन अंसारी, ये देखिए हाथों को, मन अंसारी, मेरा मददगार। जवाब सुनिए, इसको दिल की तख्तियों पर लिख लें। खवारियों ने ये नहीं कहा कि नहनु अंसारुक, हम तेरे मददगार हैं। क्या कहा? नहनु अंसारुल्लाह। और वल्ला ही दीन का काम सिर्फ वही आखिर तक करेगा जो अंसारुल्लाह बनेगा। जो अल्लाह के अलावा किसी शख्सियत से जुड़ जाए, मेरे नाम पे कह दे हम तो आपकी खातिर मदद कर रहे हैं, हम तो आपके लिए आ रहे हैं, जो आप मेरे लिए आएंगे ना वो एक वक्त आएगा मेरे लिए चले भी जाएंगे, ये भी याद रखिए। सिर्फ अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है कि जो इंसानों को आखिर तक अपनी नेकियों पर जमाए रखती है, और इसमें जब कमी होती है ना तो इंसान बहुत पीछे चला जाता है। तो ये खूबसूरत नुक्ता है, इसको नोट कीजिए। जब कभी कोई नेकी करें, जान से, माल से, वक्त से, तो अल्लाह के लिए करें। आप कहते हैं इन्होंने कह दिया हमने ये नेकी कर ली, मजबूर कर दिया ये कर लिया, इससे बेहतर आप ना करें। नेकी का छोटा या बड़ा मौका, माल देना पड़े तब भी, जान देनी पड़े, वक्त देनी पड़े, कहिए कि अल्लाह तेरे लिए कर रही हूँ, तू कबूल कर ले, इंशाल्लाह फिर अल्लाह कबूल भी बहुत करेगा। कहा आमन्ना बिल्ला, हम ईमान ला अल्लाह पर, नोट कीजिए। ये नहीं कहा कि आमन्ना बिक, ए ईसा हम तेरे पे ईमान लाए, नहीं, अल्लाह पे लाए। अल्लाह का लफ्ज़ बीच में हो तो इंशाल्लाह सारी खैरें हैं। वशखत भी अन्ना मुस्लिमून, आप भी गवाह रहिए कि हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं, यानी गवाही भी दे दी और साथ ही अपना तारुफ भी पेश कर दिया। इससे क्या पता चलता है? कि जब अल्लाह पे नजरें होती हैं तो इंसान मुस्लिम बनता है। यहाँ नोट करेंगे लफ्ज़ बी अन्ना मुस्लिमून, कौन कह रहा है? ईसा के साथी खुद को क्या कह रहे हैं? मुसलमान। आज ईसा के मानने वाले खुद को मुसलमान कहते हैं? नहीं कहते। और दूसरी बात देखिए कि उन्होंने अपना कोई फिरका वराना नाम नहीं रखा। ये भी तो कह सकते थे वशखत बी अन्ना मसीहियून, वशखत बी अन्ना नासिरून, क्रिश्चियून, नो, बी अन्ना मुस्लिमून। तो आपको अकीदा भी समझ आ रहा है कि फिरकेबाजियों से छोड़ छाड़ कर अपने आप को अलग करें। और नोट करें, हर दौर में किसी दीनदार को अगर ऐसे लोग मिल जाएं हवारियों जैसे, चाहे वो 12 ही हो, जिंदगी में 12 थे, आज लाखों करोड़ों में बदले में, लेकिन वो लोग मददगार साबित हो जाते हैं उस पूरे सिस्टम के खिलाफ जो बड़ों के हाथ में होता है। आप देखिए, जो लोग मजहब की गद्दियों पे कब्जा किए होते हैं ना, अवाम की नज़र में वो मजहब के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन वो वक्त पड़ने पे पीछे हट जाते हैं जब उनकी अपने मुफादात पे चोट पड़ती है। तो दीन का काम मैंने देखा है, पैसे वाले के ऊपर नज़र रखें तो वो नहीं करेगा, पैसा लगाने की सूरत में। जिसके पास वक्त बहुत है, आप कहते हैं इनके पास वक्त ही बहुत है, वो नहीं लगाएगा। आप कहते हैं इनके पास टैलेंट बहुत है, स्किल बहुत है, वो नहीं लगाएगा। वो लगाएगा जो अंसारुल्लाह बनेगा। बात समझे आप लोग? यानी जरूरी नहीं कि जिसके पास पैसा बहुत है वो पैसा ज्यादा दे, जिसके पास वक्त ज्यादा है वो दीन को वक्त ज्यादा दे, जिसके स्किल ज्यादा है वो दीन को स्किल ज्यादा दे। ये वही देगा जिससे अल्लाह कराएगा, ये अल्लाह की एक शान है। हम अपना वक्त गैरों को पेश करते रहते हैं और उसके बदले में चंद टके लेकर हम घर आते हैं और हम बड़े खुश होके कहते हैं आज इतनी कमाई की। अल्लाह के रस्ते में जाएंगे, कमाई क्या करनी, हो सकता है बस का टिकट भी खुद लेना पड़े, वो नहीं लोगों को समझ आती। तो लिहाजा ये सारी बातें मेरे आपके लिए अमल की दावत देती हैं कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें भी अंसारुल्लाह बना। यहाँ जो बात है ना, बिल्कुल यही चीज़ आपको सूरत हदीद के आखिर में भी मिलेगी। बहुत ही वहाँ तो खूबसूरत तरीक़ाकार है कि कैसे अल्लाह ताला ने उसमें ये सारी बातें रखी। सवाल पैदा होता है कि दीन का काम करने के लिए मददगारों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि एक अकेला दो ग्यारह, हिमायत की ज़रूरत होती है, साथ की ज़रूरत होती है, ऐसे अफराद की ज़रूरत होती है जो दावत का झंडा लेकर उठें, मुसलसल दावत दें। और अल्लाह के नबी भी हज के मौसम में लोगों को अपने साथ लेकर निकलते थे और आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहा सबसे पहले अंसार ने, वहाँ भी अंसार अल्लाह थे, वो अंसारी बने। हालांकि नबी ने अपनों से भी मांगा, गैरों से भी पूछा, लेकिन वही लोग सामने आए जिनका नसीब अच्छा था। बहुत खूबसूरत इसमें हदीसें हैं जो अभी मैं नहीं कोट करवा सकूंगी आपको, लेकिन आप बस इतना यकीन रखें, आज आप भी कह दें और मैं भी कह दें कि वशहद भी अन्ना मुस्लिमान, लेकिन उससे पहले आमन्ना बिल्ला कहना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ आना मुश्किल नहीं लगेगा, ये कुर्बानियाँ देना, बैठना, सीखना, कल खिदमत करना, ये आसान लगने लगता है। इसीलिए आगे का रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता, ए हमारे रब जो आपने नाजिल किया हम उस पर भी ईमान लाए, वत्तबाना रसूल और हमने रसूल की भी पैरवी की, फक्तुबना मा शाहिदीन पस हमें भी गवाही देने वालों के साथ कर दें। कितनी बड़ी बात है, आप देखिए फौरन बात समझ आ गई। आमन्ना बिमा अंज़लता क्या चीज़ है, कुरान या उस दौर की तौरात, वत्तबाना रसूल क्या है, रसूल की पैरवी। आज हमें भी तो इन्हीं दो बातों की बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तरक तो फी कुम अमरैन, मैं तुम्हारे पास दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम कभी भी नहीं फटकोगे अगर तुम इन दो चीज़ों को लेकर चल पड़ोगे। और एक क्या है, किताबुल्लाह, ये क्या बना इधर, बीमान जलता, और दूसरी सुन्नति रसूली ही, ये क्या है, वत्तबान रसूल। आज भी जन्नत में जाने के ये दो ही दरवाजे हैं, किताब और सुन्नत की पैरवी या हदीस की पैरवी, और अल्लाह ताला हम सबको कुरान सुन्नत से जोड़ दे। इससे इधर उधर सिर भटकना है, इधर से उधर पीछे हो जाता है। और ये जो फक्तुबना मा शाहिदीन है, इस पर एक बड़ी खूबसूरत बात नोट करें, तौरात और इंजील में सहाबा का जिक्र शाहिदीन के नाम पे था, जैसे हम कहते हैं ना सहाबा कराम, तो तौरात में अबू बकर और उमर की बातें थी तो उनको शाहिद कहा जाता था क्योंकि उन्होंने नबी का मुशाहिदा किया यानी देखा। तो बात कहते हैं फक्तुबना मा शाहिदीन में ये ख्वाहिश कर रहे हैं क्या मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में लिख लें। बात समझ आ गई है तो ठीक है।